ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सोहं तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्तिर्जितः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्। हरे कृष्ण। महाभागवत श्री विदुर जी के समक्ष अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए भगवत पार्षद उद्धव बोल रहे हैं। वृंदावनम परित्यजम पादमेकम न गच्छति। श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक पग भी अन्यत्र नहीं जाते हैं, तो उनका दर्शन हो जाएगा। इस लालसा से मैं वृंदावन में आया हूँ। अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, परंतु हाय हाय, कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है। अब भी मन उनके विरह से व्यथित है। विरहातुरात्मा, सोहम स अहम, वही मैं, श्री कृष्ण के आदेश प्राप्त किया हुआ, कृष्ण के आज्ञा से बद्रिकाश्रम जाता हुआ, वही मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं श्री कृष्ण के दर्शन से बहुत बड़ा आनंद प्राप्त किया। कह रहे हैं सोहम तद दर्शनाह्लाद, उनके दर्शन का आनंद मुझे प्राप्त है। मतलब बीच बीच में भी जब गाढ़ स्मृति कृष्ण की होती है तो कृष्ण का दर्शन हो जाता है। आज भी बद्रिकाश्रम के मार्ग में भी कृष्ण का दर्शन होता है। और इसके साथ कहते हैं वियोगार्थी जुतः, और फिर कुछ क्षण के बाद वियोग की भी अनुभूति होती है। तो आह्लाद और वियोग के दुख से युक्त होकर हे प्रभु, हे महात्मन विदुर, मेरी स्थिति अद्भुत है, क्या मैं बताऊं। कभी दर्शन का सुख प्राप्त करता हूं, कभी वियोग का दुख। तो वियोग के दुख और दर्शन के सुख दोनों से युक्त होकर मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूं। बद्रिकाश्रम जाऊंगा, क्यों कि तस्य दैतम, यह बद्रिकाश्रम हमारे परम प्रेष्ठ श्री कृष्ण का प्रिय है, इसलिए मैं बद्रिकाश्रम जाऊंगा। तो मान लो विदुर जी पूछ रहे हैं कि हे उद्धव, आप कृष्ण विरह व्यथा में पड़कर अब तक जीवित कैसे हैं? आप उनके वियोग को कैसे झेल रहे हैं, क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उद्धव कह रहे हैं कि केवल वियोग नहीं है, उनके दर्शन का आह्लाद भी मुझको प्राप्त है। उनका दर्शन भी बीच बीच में हो जाता है। दर्शन का आनंद है और वियोग का दुख दोनों भोगता हूँ। निरंतर वियोग का दुख होता तो शायद हम नहीं बच पाते। लेकिन उद्धव की उक्तियों से पता चल रहा है कि उनको कृष्ण का दर्शन भी हो रहा था बीच बीच में, इसलिए उद्धव जीवित रहे। दूसरी बात यह है कि भगवान की आज्ञा का पालन करना भक्त का परम धर्म है, मुख्य कर्तव्य है। भगवत आज्ञा पालन हेतु ही उद्धव जीवित थे, क्योंकि भगवान कहे थे कि आप बद्रिकाश्रम चले जाओ। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कोई भी कृष्ण समर्पित, गुरु समर्पित व्यक्ति इस रहस्य को समझ सकता है। कभी कभी अपने बिल्कुल विश्वस्त परिकर से इस प्रकार के कार्य कराए जाते हैं जो साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है। जो बिल्कुल कृष्ण के प्रति समर्पित है और कृष्ण के वियोग जनित दुख को झेलते हुए भी वह कृष्ण की सेवा करता है, अथवा गुरु के संग सुख सानिध्य प्राप्त न करते हुए गुरु की आज्ञा से उनसे दूर रहकर भी उनके प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, इस तरह के अनेक उदाहरण हैं हमारे इतिहास में, हमारे वैष्णव समाज में बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें से एक मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण थे, अपने भक्ति सुख का स्वयं आस्वादन करने के लिए और संपूर्ण जगत को भक्ति रहस्य का ज्ञान देने के लिए इस पृथ्वी पर 500 वर्ष पहले आए थे, बंगाल के नवदीप धाम में। तो वहां आकर बाल्यावस्था तो पढ़ाई लिखाई में व्यतीत किए, फिर गया जी में जाकर अपने पिता का श्राद्ध किए और वहां से लौटने के बाद हरिनाम के प्रचार प्रारंभ किए। तो उनके बचपन का नाम निमाई था, बड़ा चंचल निमाई पंडित। उनके अद्भुत विद्वता, उनके शास्त्र दक्षता और भक्ति भाव को देखकर पूरा नवदीप मंडल चकित था। बड़े बड़े विद्वान स्तंभित थे उनके व्यवहार स्वभाव और विद्वता को देखकर। उसी क्रम में एक कृष्ण समर्पित भक्त थे, लोकनाथ स्वामी, लोकनाथ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी पढ़ने के लिए नवदीप में आकर रुके हुए थे जब निमाई बिल्कुल बालक थे। तो अद्वैताचार्य के यहाँ भागवत आदि शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। उस समय निमाई का ज्येष्ठ भाई विश्व रूप पढ़ रहे थे। तो विश्व रूप के सहपाठी के रूप में लोकनाथ गोस्वामी ने शिक्षा प्राप्त की अद्वैताचार्य के विद्यालय में। उस समय निमाई की चंचलता, उसका भुवन मोहन सुंदर रूप और अद्भुत तेज को देखकर लोकनाथ मन ही मन बहुत प्रभावित थे। लेकिन अध्ययन समाप्त होने के बाद वो अपने देश लौट गए, उधर जो आज बांग्लादेश है उस क्षेत्र में रहते थे, लौट गए। लेकिन मन ही मन संकल्प लिए कि काश ऐसा समय कब आएगा जब निमाई सब कुछ छोड़कर भक्ति का प्रचार करेगा और हम इसके साथ रहेंगे। निमाई के सौंदर्य, तेज और उसके अद्भुत अलौकिक व्यवहार को देखकर लोकनाथ गोस्वामी प्रभावित थे और उन्होंने संकल्प लिया कि जीवन में गृहस्थी न स्वीकार करके केवल भक्ति करेंगे। और उनके संकल्प पूरा हुआ। निमाई जब गया जी से लौटा तो अद्भुत ढंग से भक्ति का प्रचार प्रारंभ हुआ। कृष्ण के नामों को गाना और घूम घूम कर गली गली में लोगों से नाम बुलवाना, भागवत के अद्भुत रहस्यमय कथाओं को कहना सुनना इत्यादि। तो लोकनाथ के कान में जब ये बातें गई तो सब कुछ छोड़कर पुनः नवदीप आ गए। इस इच्छा को लेकर कि हम निमाई के साथ अपना संपूर्ण जीवन भक्ति में व्यतीत करेंगे। लोकनाथ श्रीवास जी के आंगन में अपने प्रेष्ट निमाई के चरण में जब दंडवत प्रणाम किए तो आश्चर्यचकित होकर निमाई पूछिए कौन है। जब पता चला निमाई के समक्ष खड़े हुए लोकनाथ गोस्वामी तो कहे हा लोकनाथ। महाप्रभु दौड़ कर उनका आलिंगन किए और कहे बहुत अच्छा किए आप आ गए, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपका इंतजार कर रहा था, बहुत अच्छा हुआ आपका आगमन हुआ। तो तुरंत ही लोकनाथ पूछते हैं कि हे महाप्रभु वो कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए आप मुझे इंतजार कर रहे हैं। तो कहे नहीं आपको बाद में बतलाऊंगा स्थिर अवस्था में, अभी आप थके मांदे हैं, जाइए माता जी के हाथ से भोजन कीजिए, विश्राम कीजिए, सुबह मैं बताऊंगा। लोकनाथ महाप्रभु की आज्ञा से यद्यपि माता सची के यहाँ जाकर प्रसाद लिए लेकिन उनको रात भर नींद नहीं आई कि वह कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए महाप्रभु मेरा इंतजार कर रहे हैं। वही निमाई चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो वही चैतन्य महाप्रभु मुझसे क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, रात भर यही सोचते रहे। सुबह आकर जब महाप्रभु के चरणों में निवेदन किए कि महाप्रभु मैं आपके कौन सा महत्वपूर्ण कार्य में काम आ सकता हूँ, कृपा करके बताइए। तुरंत महाप्रभु कहते हैं लोकनाथ आप वृंदावन चले जाओ, आप वृंदावन जाओ, वृंदावन श्री कृष्ण की लीला भूमि है और आज अरण्यमय हो गई है, पूरा वन जंगल हो गया है और चोर डाकुओं का स्थान बन गया है, आप वहां जाओ और भगवान के परम दिव्य लीला स्थलियों का अनुसंधान करो, वहां भगवान के श्री विग्रह स्थापित करो और लोक चक्षु से ओझल वृंदावन को जगत के सामने उजागर करो, ये मेरी इच्छा है, आप जाओ। तो लोकनाथ कहे कि नहीं प्रभु, मैं तो सब कुछ छोड़ कर आया आपके सानिध्य सुख का स्वादन करने के लिए, आप जहां हो वही वृंदावन है। तो महाप्रभु कहते हैं लोकनाथ इसमें आना कानी मत करो, वृंदावन मेरा हृदय है, मैं आपको वृंदावन भेज कर अपने हृदय के निकट रखना चाहता हूँ। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के बार बार आग्रह के बाद भी लोकनाथ तैयार नहीं हो रहे थे, कहे नहीं प्रभु मुझको उस वृंदावन के सुख से कोई मतलब नहीं, मैं तो आपके संग सुख का स्वादन करना चाहता हूँ, आपके संग में आपके सानिध्य में भजन करना चाहता हूँ। महाप्रभु वृंदावन के अनेक महात्म को बतलाए कि वृंदावन भगवान की लीला स्थली है, वहाँ नित्य भगवान लीला करते हैं, लेकिन आज लोक दृष्टि से वृंदावन ओझल हो गया है, आप जैसे परम रहस्यमय भक्त भगवान के लीलाओं का स्वादन जब वहाँ करेंगे भजन करेंगे तो आपकी कृपा से प्रभाव से लोगों को भी पता चलेगा वृंदावन की महिमा, इसलिए आप जाओ। बार बार आग्रह कर रहे थे, बार बार आग्रह कर रहे थे, लेकिन लोकनाथ तैयार नहीं हो रहे थे। तो अंत में महाप्रभु ने ऐसी बात कह दी जिसके सामने लोकनाथ के पास कुछ भी कहने को नहीं रह गया, वह यह है कि श्री महाप्रभु ने कहा कि लोकनाथ यदि तुम मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो इस कार्य में विलम्ब न करो। अब तो लोकनाथ के पास कुछ रह ही नहीं गया कहने का। तो लोकनाथ कहे कि प्रभु श्री वृंदावन तो भगवान की लीला भूमि, आपका हृदय स्वरूप है, अगर आपकी प्रसन्नता मुझको अनंत काल तक नरक में रहने में है तो भी मैं कर लूंगा, वृंदावन तो बहुत अच्छा स्थान है, आपका धाम है, मैं अवश्य वृंदावन जाऊंगा। तुरंत लोकनाथ उनके चरणों में प्रणाम किए और वृंदावन के लिए तैयार हो गए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यदि तुम मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो इस कार्य में विलंब मत करो। तो महाप्रभु को दुखी रखकर और प्रसन्न रहकर उनके साथ रहना उससे करोड़ों गुना बेटर है कि उनकी प्रसन्नता के लिए उनसे दूर रहना। तो भगवान के भक्त कभी कभी भगवान से दूर रहकर भगवान की प्रसन्नता लाभ करते हैं, कभी कभी समर्पित शिष्य गुरु से दूर रहकर गुरु के इच्छा के अनुसार भक्ति का प्रचार करते हैं और उस प्रसन्नता सुख का स्वादन करते हैं कि हमको ऐसी आज्ञा मिली है। श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए वृद्धावस्था में 70-72 वर्ष की उम्र में पाश्चात्य जगत में गए, अमेरिका गए, और वहां जाने में रास्ते में ही 2-3 बार इनको हार्ट अटैक हुआ, भगवान की कृपा से बचे और जा करके उन हिप्पियों को हैप्पी किए जो मांस शराब नशा व्यभिचार में लिप्त थे, ऐसे भोगासक्त लोगों को कृष्ण भक्ति देकर कृष्ण नाम देकर हैप्पी किए, प्रसन्न किए। यह है भगवान की प्रसन्नता और गुरु की प्रसन्नता। तो यहाँ भगवान के संग में रहने का जो सुख है उससे बेटर सुख है भगवान के प्रसन्नता से भगवान से दूर रहना। तो उद्धव श्री भगवान से दूर बद्रिकाश्रम जा रहे हैं, उसमें मुख्य कारण है भगवान की प्रसन्नता। भगवान चाहते हैं कि आप बद्रिकाश्रम जाओ और वहां हमारे विरह से संतप्त भक्तों को भागवत का उपदेश करो, कथा सुनाओ। तो भगवान की इच्छा से उद्धव बद्रिकाश्रम जा रहे हैं। अपने स्थिति का निरूपण करते हुए आगे कहते हैं, जत नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि मृदु तीव्रम तपो दीर्घ ते तापे लोक भावनौ। जिस बद्रिकाश्रम में जगत का हित करने के लिए लोगों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान नर नारायण निवास करते हैं, दीर्घ काल तक तप करते हैं, और मृदु तीव्रम दीर्घम तपह ते पाते। इस प्रकार वहां कोई उपद्रव नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल शांत वातावरण है, इसलिए भगवान नर नारायण वहां तपस्या करते हैं। सर्वलोक सुखदम वह स्थान है, सर्वलोकैक दुश्चरम तप कर रहे हैं। तीव्रम का अर्थ है बहुत कठिन तप, जो साधारण लोगों के बस की बात नहीं है, और दीर्घम का अर्थ है बहुत काल व्यापी, बहुत काल से दीर्घ काल तक। लोकानाम भावनऊ उत्पादकऊ पालकऊआ, वास्तव में लोक दृष्टि से परे अद्भुत तपस्या किए, जहां साक्षात भगवान ही नर नारायण के रूप में रहते हैं, उस बद्रिकाश्रम में जा रहे हैं। तो आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, मुख्य कथा तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो इस प्रकार विदुर जी उद्धव जी के श्रीमुख से अपने स्वजनों का विनाश की कथा सुने, इसको आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। श्री शुक उवाच, इत्युधवादुपाकर्ण्य सुहृदाम दुस्सहम व्यधम ज्ञाने नाशय यच्छत्ता शोक मुत्पतितम बुधा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विदुर उद्धव से इस प्रकार सुहृदों के विनाश की कथा सुनकर अपने हृदय में उत्पन्न शोक को ज्ञान से, कृष्ण लीला के तात्पर्य ज्ञान से शांत किए। उनको बहुत दुख हुआ यह सुनकर कि पांडव लोग परस्पर लड़कर, कौरव पांडव का युद्ध हुआ और साथ ही जादवों का भी परस्पर युद्ध हुआ और सब अपने अपने स्थान को प्राप्त हो गए। यह सुनकर उनको कष्ट हुआ, लेकिन ज्ञान से उस शोक को शांत किए, ज्ञाने न ज्ञान के द्वारा उस शोक को शांत किए, असम्मयत उस शोक को शांत किए, पूरा पूरा अपनी बुद्धि को भगवान की इच्छा में मिला करके शांत हुए। यद्यपि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने मित्रों और संबंधियों के वध की कथा तो सुने ही, इसके साथ ही यदुवंश के विनाश का संवाद विदुर के हृदय में बहुत शोक पैदा कर दिया, परंतु विदुर उस शोक को दबाने में समर्थ हो गए। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि दीर्घ काल तक शारीरिक संबंधों में रहने के कारण मित्रों एवं संबंधियों के वध से दुखी होना आश्चर्यजनक नहीं है, दुख होता है, फिर भी विद्वान पुरुष को उस शोक को दिव्य ज्ञान द्वारा दमन करने की कला सीखनी चाहिए। शोक तो होता है जिनके साथ रहते हैं, अपने निकटतम संबंधी का अचानक मृत्यु हो जाए तो कष्ट होता है, शोक होता है, उनके गुणों का स्मरण करके बहुत दुख होता है, उसको शोक कहते हैं। लेकिन जगत के स्थिति, संसार की व्यवस्था पर विचार करके व्यक्ति उस शोक को शांत करता है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके उन शोकों को दूर करता है। तो सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभ विश्रम भया दम्य धत्ते दम मुख्यम कृष्ण परिग्रह। तो सह कौरवर्षभ विदुर के लिए कहा गया है, वह कुरुश्रेष्ठ विदुर कृष्ण परिग्रहे मुख्यम महाभागवतम व्रजंतम तम विश्रम्भात इदम अभ्यदत। कुरुकुल श्रेष्ठ विदुर कृष्ण परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव के प्रति श्रद्धा विश्वास से यह बोले। अब विदुर जी कुछ बोलते हैं, उनको कहते हैं व्रजंतम तम। ब्रजंतम तम का मतलब है बद्रिकाश्रम जाने के रास्ते में जो उद्धव है, अब जाने वाले हैं, उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, अब जाने के ही मूड में हैं, ऐसे उद्धव से विदुर जी बोले। और बोलते क्या है आगे आप सुनेंगे, वो आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें वह ज्ञान दीजिए जो श्री भगवान जाते जाते आपको दिए, ओ भागवत हमको भी सुनाइए। यद्यपि उद्धव से विदुर जी बहुत अधिक ज्येष्ठ थे, पारिवारिक संबंध में भी उद्धव कृष्ण के भाई थे, जबकि विदुर कृष्ण के फूफा अर्थात कृष्ण के पिता वसुदेव जी के समान थे, परंतु आयु और संबंध में कनिष्ठ होते हुए भी उद्धव श्री कृष्ण के सेवा भक्ति में अग्रसर थे। इसलिए यहाँ उद्धव को कृष्ण परिक्रमा में मुख्य कहा गया है, मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। यहाँ विदुर उद्धव को गुरु मानकर कृष्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आयु और संबंध में कनिष्ठ होते हुए भी भक्ति में उन्नत व्यक्ति ज्येष्ठ व्यक्ति का गुरु बन सकता है। जैसा भगवान कपिल देव अपनी माता देहूती को उपदेश किए, देहूती भगवान कपिल की जननी थी, फिर भी शिष्यवत भगवान कपिल से शिक्षा प्राप्त की, और भगवान कपिल ऊंचे आसन पर बैठकर माता को उपदेश कर रहे हैं, और माँ पूरा विनम्र भाव से भगवान कपिल के चरणों में बैठ करके उनके चरणों में प्रणाम करके जो शास्त्रीय विधि है उसके अनुसार शिक्षा ग्रहण की। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो तत्वदर्शिनः जो तत्ववेता आचार्य हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़कर सेवा से प्रसन्न करके तब ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। वैसे माता देहूती भगवान कपिल से ज्ञान प्राप्त की। तो इस प्रकार विदुर जी आगे बोलते हैं, विदुर उवाच ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम जदाह जोगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भवान नोरहति अद्धि विष्णु भृत्यास्वभृत्यार्थ कृतः चरन्ति। विदुर जी कहते हैं जोगेश्वरः ईश्वरः स्वात्मरः प्रकाशम जत परम ज्ञान ते आह भवान न वक्तुम अर्हसि। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपनी रहस्यपूर्ण लीला जो श्रीमद् भागवत रूप ज्ञान आपको बताए वह आप कृपा करके मुझे बताइए। न वक्तुम अर्हसि वह हमें बताइए। यदि विष्णु भृत्या स्वभृत्यार्थः कृतः चरन्ति। इसके साथ विदुर जी एक विशेष बात कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्तों का एक काम ही यही है भगवान के विषय में बताना। अपने दास के प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही तो भक्त लोग घूमते हैं, जो विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके भगवान के विषय में सुनने के लिए तैयार है उसको सुनाने के लिए ही तो भगवत भक्त घूमते हैं। यदि विष्णु भृत्या स्वभृत्यार्थः कृतः चरन्ति। विष्णु भृत्या भगवान के भक्त वैष्णव लोग स्वभृत्यार्थः, स्वभृत्यार्थः माने जो उसके चरणों में विनम्र भाव से सुनने के लिए तैयार है उसको सुनाते हैं, इसके लिए वो चरन्ति घूमते हैं। यहाँ विदुर जी नह शब्द का प्रयोग करके एक वचन के जगह पर बहुवचन का प्रयोग किए हैं, नह वक्तुम अर्हसि हम लोगों को बताइए। केवल मुझे नहीं कह रहे हैं, बहुवचन में कह रहे हैं। तो यहाँ श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यहाँ बहुवचन का प्रयोग एक वचन के स्थान पर ही हुआ है, वो अकेले अपने को कह रहे हैं। अस्मद दो द्वयोश्च सूत्र के अनुसार एक वचन द्विवचन के स्थान पर विकल्प में बहुवचन हो जाता है। इसके अनुसार यद जिसके लिए विष्णु भृत्या विष्णु भक्तगण भक्ति के उपदेष्टा होकर घूमते रहते हैं, मुझ सेवक को भगवत विषय ज्ञान का उपदेश कीजिए, यह अर्थ है। आप मेरे लिए भक्ति का उपदेश कीजिए। यह एक विशेष बात है, यहाँ विदुर अपने को कृष्ण भक्त उद्धव का दास स्वीकार कर रहे हैं। इस रूप में दास स्वीकार कर रहे हैं, जत ही विष्णु भृत्या स्वभृत्यार्थः कृतः चरन्ति कहकर सिद्धांत बताते हुए अपने अवस्था का भी वर्णन करते हैं। कि भगवान के भक्त विष्णु के भक्त वैष्णव लोग अपने अनुगत भृत्यों को उपदेश करने के लिए घुमा करते हैं, तो आप भी भगवान के परिकर हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं, तो अपने सेवक मुझ विदुर को उपदेश कीजिए। यह विदुर जी की विनम्रता है। वैष्णव गण ही समाज के वास्तविक हितैषी हैं, क्योंकि समाज में एक कृष्ण ज्ञान बांटते हुए विचरण करते हैं। कृष्ण तत्ववेता कोई व्यक्ति गुरु हो सकता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो, शूद्र हो, गृहस्थ हो या सन्यासी हो। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नय, जेई कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। चाहे वह विप्र हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, शूद्र क्यों न हो या गृहस्थ क्यों न हो, यदि वह कृष्ण तत्ववेता है तो वह गुरु है। और एक विशेष बात कि ऐसे विष्णु भक्त लोग जगत के हित के लिए विनम्र व्यक्ति को कृष्ण के उपदेश करने के लिए घुमा करते हैं। स्वभृत्यार्थ कृतः चरन्ति, इस प्रकार की बात श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र भी है। जब एक बार भगवान ऋषभ देव के पुत्र निमि महाराज के यज्ञ में उपस्थित हुए, तो वहां विदेह राज निमि ने उनका स्वागत किया और उनके चरणों में कुछ जिज्ञासाएं की, तो उनका सम्मान करते हुए निमि महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय के 28 नंबर श्लोक में, मन्ने भगवतः साक्षात पार्षदान यो मधु दिशः, मैं आपको साक्षात भगवान का पार्षद मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के आप साक्षात पार्षद हैं। तो प्रश्न होता है कि पार्षद तो भगवान के धाम में बैकुंठ में रहते हैं, आप हमको कैसे पार्षद कह सकते हैं? कहते विष्णु भूतानि लोकानाम पावनाय चरन्ति ही, ऐसे भगवत पार्षद जगत के हित करने के लिए घुमा करते हैं, बैकुंठ से भी आकर इस प्राकृत जगत में घूमते हैं लोगों के उपकार के लिए। वहां भी चरन्ति शब्द का प्रयोग किया गया, चरन्ति चलते हैं, घूमते रहते हैं। पावनाय चरन्ति ही, वो पवित्र करने के लिए, लोगों का हित करने के लिए घूमते हैं। यह विदेह राज निमि कहते हैं, जनक जी। यह महापुरुषों का स्वभाव होता है, साधु पुरुषों का, अपने आश्रम से निकल कर घूमते हैं और घूम कर कृष्ण भक्ति का उपदेश करते हैं, प्रचार करते हैं। एक बार गर्गाचार्य जी पहुंचे नंद भवन में। गर्गाचार्य जी जादवों के गुरु थे, सुप्रसिद्ध ज्योतिषी, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले। तो वसुदेव जी उनको प्रेरणा दिए कि आप जाइए, आग्रह किए, आप नंद भवन में जाकर हमारे दो बच्चे वहां है उनका नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी नामकरण के उद्देश्य से गए थे। नंद बाबा उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न, और उनकी प्रशंसा करते हुए, उनका सम्मान करते हुए कहते हैं कि आप जैसे महापुरुषों का घूमना फिरना, हमारे जैसे गृहमेधियों के यहाँ आना निश्चित रूप से हमारे कल्याण के लिए है, आपका कोई प्रयोजन नहीं है। महद विचलनम निर्णाम गृहणाम दिनचेत शाम निशेषाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित। हे भगवान, आप जैसे महापुरुषों का घूमना, अपना आश्रम छोड़कर हमारे घर में आना, हमारे जैसे गृहस्थों के घर में आना, गृहणम दिन चेत सम, ये गृहस्थ जिनको काम धंधा से फुर्सत नहीं है, वो अपने काम को छोड़कर हरिद्वार, बद्रिकाश्रम, ऋषिकेश नहीं जा सकते हैं, वृंदावन नहीं जा सकते, उनको फुर्सत नहीं मिलता, तब आप जैसे महात्मा कृपा करके अपना आश्रम छोड़कर हमारे यहाँ आते हैं, तो हम दीन चेत सम है, हमारा चित, हमारी बुद्धि इन घर गृहस्थी में दीन हो गई है, निकल हम नहीं पाते हैं, हम लाचार हैं, ऐसी स्थिति में आते हैं, तो आपके आने का उद्देश्य क्या होता है? निशेषाय, हमारा कल्याण, हमारे कल्याण के लिए आप आते हैं। कल्पते नान्यथा क्वचित, इसके अलावा और कोई कारण नहीं होता है, केवल आप हमारे कल्याण के लिए आते हैं, ये नंद बाबा कह रहे हैं। इस तरह की कई बात जगह ऐसी बातें हैं। एक बार देवर्षि नारद द्वारिका में घूमते हुए वसुदेव जी के भवन में गए तो वसुदेव जी कहते हैं भगवान भवतो यात्रा स्वस्थे सर्वदेही नाम। हे भगवान, आप जैसे विरक्त महात्माओं की यात्रा जो है ये जीवों के मंगल के लिए है, कल्याण के लिए है। आप हमारे घर पधारे, देवर्षि नारद का स्वागत करते हुए वसुदेव जी कहते हैं भगवान भवतो यात्रा स्वस्थे सर्वदेही नाम। आपकी यात्रा सभी देहधारियों के कल्याण के लिए है, स्वस्थि के लिए है। तो इस प्रकार महात्मा लोग जीव के कल्याण के लिए घुमा करते हैं। कभी कभी लोग आज के समाज में इस प्रकार की बातें करने लगते हैं। एक बार इस तरह की बातें, यही प्रसंग मैं कहा था मुंबई में, तो एक व्यक्ति प्रश्न करने लगा कि लेकिन आज कल तो महात्मा लोग रसीद बुक लेकर घूमते हैं, केवल कल्याण करने के लिए नहीं कलेक्शन करने के लिए आते हैं, ऐसा प्रश्न कर दिया। तो फिर उसको बड़ी शांति से मैं समझाया कि आप गृह मेधी धन पिचास, केवल धन कमाने के चक्कर में सारा जीवन बर्बाद कर रहे हो, और ये संपत्ति श्री जो है लक्ष्मी की पत्नी है, जनरल किसी पब्लिक की नहीं, और लक्ष्मी के चरणों में रहकर ही संतुष्ट हो सकती है। ऐसा नहीं कि जो चाहेगा उसकी पत्नी हो जाएगी, जो चाहेगा उसको अपनी सवारी कर लेगी, लेकिन पत्नी तो लक्ष्मी विष्णु की है। समस्त देवताओं को, बड़े बड़े ऋषियों को, ब्रह्मर्षियों को, तेजस्वियों को छोड़कर लक्ष्मी ने विष्णु को स्वीकार किया। सबके अंदर दोष निकालकर सबको रिजेक्ट कर दी समुद्र मंथन के बाद। जब लक्ष्मी निकली तो सब लोग उनको चाहते थे, लेकिन किसी को नहीं स्वीकार की। इसके जीवन का भरोसा नहीं कब मरेगा, इसमें सारा तप है लेकिन इस क्रोध पर कंट्रोल नहीं, क्रोधी है ये, लंपट है ये, कामी है ये, लोभी है, कुछ न कुछ दोष सब में निकाल दी, लेकिन सब तरह से सुख स्वरूप आनंद स्वरूप केवल भगवान है। भगवान को ही अपना पति के रूप में स्वीकार करके वरमाला डाली, तो केवल विष्णु के चरणों में ही लक्ष्मी सुख शांति के अनुभव करती है। और दूसरा, जब लक्ष्मी पर कब्जा करना चाहता है तो उसको अपना पति नहीं बनाती, सवारी बना देती है। और लक्ष्मी की सवारी क्या होता है, उल्लू, एक पक्षी है जिसको दिन में नहीं दिखाई देता। तो जो ज्यादा लक्ष्मी के चक्कर में पड़ते हैं तो लक्ष्मी उनको उल्लू बना देती है, और ऐसे उल्लुओं को पता नहीं चलता कि पैसा मंदिर में देना चाहिए, साधु के आश्रम में देना चाहिए, परोपकार में देना चाहिए, दीन दुखी लोगों के उपकार में देना चाहिए कि क्लब में देना चाहिए, पता ही नहीं चलता है। अंधे हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि दीन दुखी गरीब के हित में पैसे को, कमाई को खर्च करना चाहिए, या साधु महात्मा जहां भागवत कथा हो रही हो, जहां सत्संग हो रहा हो, जहां सज्जन पुरुष निवास करते हो, जहां गायों की सुरक्षा की जा रही हो, गौशाला में दें, ऐसा नहीं करेंगे। और ले जाकर वैश्यालय में, क्लब में और शराब पीने में खर्च करेंगे, क्योंकि उल्लू है ना, दृष्टि नहीं है, पता नहीं चलता क्या उचित है क्या अनुचित है। तो लक्ष्मी पर कंट्रोलिंग पावर केवल विष्णु की है, और लक्ष्मी की शोभा और सुख आनंद भगवान की सेवा में है। वह बैठ करके भगवान के चरण को अपने जांग पर रख कर सहलाती रहती हैं। समस्त विश्व ब्रह्मांड के सुख समृद्धि सौंदर्य संपदा की अधिष्ठात्री होकर भी लक्ष्मी विष्णु की दासी है। तो विष्णु के चरण में अगर लक्ष्मी का उपयोग किया जाता है तब प्रसन्न हो जाती है। आज ज्यों ही उस पर कंट्रोलिंग करने का की बातें सोचते हैं तो उस पर ओ सवारी करती है। तो ऐसे धन पिचास उल्लुओं को कृपा करके भक्त लोग आकर रसीद बुक दिखाकर कुछ उनकी कमाई को लेते हैं भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में लेते हैं। एक व्यक्ति, दो ऐसी घटनाएं हैं महात्माओं की। एक व्यक्ति एक साधु के चरणों में गया और कुछ पैसा दिया, पैसा रख दिया, इसके बाद प्रणाम करके चलने लगा तो महात्मा जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। तब वो कहता है कि बाबा कुछ तो आशीर्वाद दीजिए, हम आपके सेवा में पैसा दिए और आप कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, तो कहेगी आशीर्वाद और धन्यवाद तो तुमको देना चाहिए कि मैं तुम्हारे पैसे को उचित जगह पर खर्च करूंगा, धन्यवाद और आशीर्वाद का पात्र मैं हूं कि तुम हो, मैं तुम्हारा नौकर हूं क्या कि तुम्हारे पैसे को कहां लगाऊं क्या करूंगा, पैसा देकर मुझको नौकर भी बनाया और आशीर्वाद भी मांग रहा है, मैं तुम्हारे पैसे को उचित जगह पर खर्च करूंगा, एक टेंशन दे दिया ना, मैं इसको गौशाला में दूं कि कहां दूं कि मंदिर में दूं भगवान की सेवा में, अब तुम्हारे पैसे को देखकर दिमाग में विविध प्रकार की योजना सेवा की बात आ गई, तो कृतज्ञता तो मेरे प्रति तुम्हारी होनी चाहिए कि मैं तुमको क्या आशीर्वाद दूं। और एक दूसरी घटना है, एक नवदीप में महात्मा रहते थे, पहले ब्रज में रहते थे राधा कुंड में, जगन्नाथ दास बाबा जी, और जब वृद्धावस्था को हो गए तो एकदम बिल्कुल झुक गए, चल नहीं पाते थे, तो उनका एक शिष्य था जो उनको टोकरी में लेकर चलता था, जहां जाने की इच्छा होती कहते चलो गंगा जी के तट पर, तो ले जाता टोकरी में, जब कहते कि ले चलो गिरिराज परिक्रमा कराओ तो टोकरी में लेकर कराता था, यहाँ उद्धव कुंड उतारो राधा कुंड में उतारो तो उतारता था, आचमन करते थे, एकदम झुक गया था, पूरा गोला हो गया था शरीर। तो एक बार नवदीप से होकर गंगा तट पर जा रहे थे, अपने कुटिया से निकलकर जा रहे थे गंगा तट पर, तब तक कोई सेठ अपने दरवाजे पर बैठे हुए, उस जमाने में आज से लगभग 400 वर्ष पहले की घटना है, सोने का मुहर 5 रुपए का मुहर फेंक दिया, टोकरी में गिरा, तो बाबा जी उस पैसे को लिए हाथ में, तो कहे रुको रुको, सेवा का नाम क्या था, गिरधर या कुछ, बिहारी दास, हाँ, कहे बिहारी रुको रुको, तो कहे बाबा हाँ क्या बात है, तो देखो किसी ने सोने का मुहर फेंका है 5 रुपए की, इसको पता लगाओ कौन फेंका कौन दिया। तो बिहारी पीछे लौटते हुए पूछते हुए भाई कौन दिया कौन दिया, तो सेठ अपने दरवाजे पर ही था, तो कहा कि हाँ बाबा जी मैं दिया, तो कहे बिहारी मुझको नीचे उतारो, टोकरी नीचे उतारे, उतार दिए, तो पूछते हैं बाबा जी क्यों दिया, तो कहा कि बाबा जी आप साधु महात्मा हैं, हमारी कमाई ऐसे है, परिवार में घर में खर्च हो रहा है, आप इसको उचित जगह पर लगाएंगे तो मुझको पुण्य लगे मिलेगा। बाबा जी इतना क्रोधित हुए, कहे मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मुझे अपना भजन करना है कि तुम्हारी कमाई को कहां लगाऊं क्या करूं, यही मेरा काम है, मूर्ख कहेंगे ले अपना पैसा, फेंक दिए। वो लगा रोने, जानता था कि सिद्ध बाबा हैं, कुछ दुखी हो जाएंगे तो अनिष्ट हो जाएगा, चरण पकड़ लिया, कहा बाबा जी गलती हो गया, गलती तुम लोग जो मन करे सो करो और हम महात्माओं को डिस्टर्ब कर दो पैसा देकर, परेशान करते हो मूर्ख कहेगा। तो कहे कि बाबा मुझे भूल हो गई क्षमा कर दीजिए, तब कहे तब खुश हो गए, जब विनम्र होकर हाथ जोड़कर कहने लगा तो कहे कि इस पैसे को गौशाला में दे देना, गाय की सेवा होती है वहां दे देना, उससे गाय की चारा आ जाएगा, उनकी सेवा हो जाएगी, तुम्हारा पैसा सार्थक हो जाएगा, सलाह दे दिए, लिए नहीं सलाह दे दिए। तो ऐसे महात्मा होते हैं जो उचित सलाह देते हैं, और वो घूमते रहते हैं, और घूम कर अगर रसीद बुक लेकर भी आ रहे हैं तो आपकी पैसा को ले जाकर जन्माष्टमी मनाने में या उत्सव करने में खर्च करते हैं, तो उससे आपको पुण्य मिलता है और उस पुण्य से आपके जो पाप है वो खत्म होते हैं, आप पवित्र होते हो। तो एक बार दो बार तीन बार चार बार हरे कृष्ण के भक्त पैसा लेने आ गए तो जुहू में राधा रास बिहारी मंदिर बनाकर क्या कर रहे हैं, आपके मन में जिज्ञासा होती है और इसके बाद देखने आते हैं वो हो क्या रहा है वहां। भक्त लोग प्रसाद भी ले जाकर घर पर देते हैं उन लोगों को, वो आते ही नहीं अभिषेक में जन्माष्टमी में कभी, फिर बाद में जिज्ञासा होती है तो देखते हैं अरे बाप रे इतनी सेवा, 7 किलोमीटर की लंबी लाइन लगाकर लोग दर्शन कर रहे हैं, उस धनी को पता ही नहीं है कि वहां क्या हो रहा है, एक से एक बड़े बड़े लोग मंत्री चीफ मिनिस्टर राज्यपाल तक आकर अभिषेक कर रहा है, देखकर चकित हो जाता है। 11,000, 20,000, 21,000 देने के कारण उनको VIP व्यवस्था होती है और भगवान का दर्शन करता है अभिषेक करता है, देखकर चकित, अरे ये तो बड़ा उचित जगह पर खर्च कर रहे हैं,
हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं, एकदम छोटा छोटा ऐसा थोड़ा प्रसाद नहीं, भर पेट प्लेट दिया जाता है, चार चार पांच पांच सौ रुपए का प्लेट एक एक आदमी को दिया जाता है खाने के लिए। लोग खा रहे हैं इतनी सुंदर छप्पन भोग, लोगों को भगवत गीता दी जा रही है, ज्ञान दिया जा रहा है, इस प्रकार की बातें देखकर वो प्रसन्न हो जाता है, उसका चित्त देखकर शुद्ध हो जाता है और फिर वह निरंतर उसे जुट जाता है, हम देंगे देंगे। और इस तरह से भगवत गीता पढ़ता है, भक्तों के मुख से नाम सुनता है तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। यह है महात्माओं का स्वभाव व्यवहार। तो इस प्रकार बहुत सारे महात्माओं को भगवान की भक्ति करने का, भगवत सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। ऐसे महापुरुष यदि किसी गृहस्थ के यहाँ आते हैं तो यह भगवान की महती कृपा समझनी चाहिए। तो फिर उद्धव कह रहे हैं विदुर जी से आगे कि आप मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं भगवान के द्वारा उपदिष्ट भागवत ज्ञान को, आप मैत्री मुनि से सुनिए। उद्धव उवाच ननु ते तत्व संग्राध्य ऋषि कौसारवंतिक में साक्षात भगवता दिष्टो मर्त लोकम जिहाशता। उद्धव जी कहते हैं कि इस मनुष्य लीला के उपसंहार के इच्छुक श्री भगवान मेरे सामने आपको उपदेश देने के लिए मैत्रेय मुनि को आदेश दिए। चलते चलते भगवान कहे कि हे मैत्रेय मुनि, इस ज्ञान को विदुर को जरूर दे देना। तो इसलिए ऋषि ननुते तत्व संग्राध्य न तु अहम्, इसलिए आप मैत्रेय मुनि के द्वारा तत्वोपदेश प्रदान के विषय में जिज्ञासा कीजिए। आपको उपदेश देने के लिए मैत्रेय मुनि को आदेश प्राप्त हुआ है और उनसे उपदेश प्राप्त करने के लिए आप जिज्ञासा कीजिए, उनके चरणों में निवेदन कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। तत्व संग्राध्य वे आराध्य हैं, इस विषय में उनकी आराधना कीजिए, उनसे हाथ जोड़िए, उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपको उपदेश करेंगे। यह है मर्यादा। वास्तव में मर्यादा पालन वैष्णवों का भूषण है। कनिष्ठ होने के कारण उद्धव अपने ज्येष्ठ विदुर को मैत्रेय मुनि के पास भेज रहे हैं। अगर वो चाहते तो वो भी सुना देते, लेकिन इसमें दो विशेष बात है। एक कि मैत्रेय मुनि श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं, उम्र में बड़े हैं, तो उनके उपस्थिति में स्वयं गुरु बनने की इच्छा उद्धव को नहीं हो रही है। एक ज्येष्ठ और श्रेष्ठ व्यक्ति उपस्थित है तो ज्ञान होते हुए भी उपदेश करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, गुरु बनने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। उपदेश तो कर सकते हैं लेकिन गुरु बनने के लिए उत्सुक नहीं रहना चाहिए। योग्यता होते हुए भी स्वयं गुरु बनने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ये वैष्णव की वैष्णवता विनम्रता है, यह आभूषण है मर्यादा का पालन करना। और इसके साथ स्वयं भगवान आदेश दिए थे मैत्रेय मुनि को कि विदुर को उपदेश करना, तो विदुर को उपदेश करना मैत्रेय मुनि का अपना निजी कर्तव्य भी था। इसलिए उद्धव जी उनको संकेत किए, बताए कि आप जाइए मैत्रेय मुनि से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री सुखव आचम इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते है गुण कथया सुधया प्लावितो रुताप क्षणमिव पुलिने यमस्व सुस्ताम समुषित औपगविनिशाम ततो गात। विश्वमूर्ते सुधया गुण कथया प्लावित उरुताप औपगवि यमस्वसु पुलिने ताम निशाम क्षणम इव समुषित ततः आगात। इस प्रकार विदुर के साथ उद्धव का वह समय एक क्षण के समान बीत गया, क्षण भर के लिए बीत गया, पूरी रात्रि बीत गई, लेकिन दोनों कृष्ण विरह संतप्त महापुरुष कृष्ण के गुण कथा में इतने तल्लीन रहे कि पूरी रात्रि क्षण भर में बीत गई। सुधा मधुर कृष्ण कथा से इतने अप्लावित थे, इतने आनंदित थे, कृष्ण के विरह में संतप्त उद्धव जमुना के पुलिन पर उस रात्रि को एक क्षण में बिता दिए, क्षण भर में बिता दिए। कृष्ण के विरह में संतप्त थे, लेकिन कृष्ण की चर्चा करने में उनको इतना सुख, इतना आह्लाद मिला कि रात्रि कैसे बीत गई पता भी नहीं चला। और जब पूरी रात्रि बीत गई, सुबह हुआ तो बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान कर दिए। क्षण युवा समुचित तत अगात, क्षण भर में उस रात्रि को बिताए और चले गए, सुबह निकल गए। तो यह है सुख का समय। सत्संग में वह रात्रि क्षण भर के समान बीत गई। सुख का समय नहीं के बराबर लगता है, लगा कि एकदम कुछ समय बिता ही नहीं। और दुख के समय बहुत भारी हो जाता है, एक एक क्षण इतना दुखमय हो जाता है, बिताना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई क्रिटिकल रोग से ग्रसित हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो, तो लगता है कि एक रात वर्षों के समान बीत रहा है, इस तरह से बीतता है। तो इस श्लोक में कृष्ण के लिए विश्वमूर्ते शब्द का प्रयोग किया गया है। उद्धव और विदुर कृष्ण के अंतर्धान से परम व्यथित थे दोनों, पर जितना ही भगवान के दिव्य नाम, जश और गुणों की चर्चा कर रहे थे, उतना ही अधिक भगवान कृष्ण का रूप सर्वत्र उनको स्फुरित हो रहा था, इसलिए विश्वमूर्ते हैं। भगवान की चर्चा करने पर भगवान दिखते हैं, प्रकट अवस्था में तो एक जगह दिखते हैं, और विरह की अवस्था में स्मरण करते हुए हर जगह वही दिखते हैं। तो इस प्रकार दोनों महापुरुष कृष्ण के गुणों का स्मरण करके विश्वमूर्ते श्री कृष्ण का दर्शन किए, कथा के माध्यम से दर्शन किए। तब महाराज परीक्षित पूछते हैं एक प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से। राजवाच निधनम उपगतेषु विष्णु भोजेषु अधिरथ जुथप जुथपेषु मुख्य सतु कथम अवशिष्ट उद्धव यदहरि रपि तत्यज आकृतिम त्रधीशः। महाराज परीक्षित ने पूछा कि अधिरथ जुथप जुथपेषु विष्णु भोजेषु निधनम उपगतेषु यत्त्यधीशः हरि अपि आकृतिम तत्यजे तू सह उद्धव कथम अवशिष्ट। अधिरथियों के नायक के भी नायक जादवों के निधन हो जाने के बाद, निधन में चले जाने पर, यहाँ तक कि ब्रह्मादि के अधीश्वर त्रयधीश हरि अपि आकृतिम त्यजेत, हरि भी अपनी मनुष्य लीला त्याग किए, फिर भी वह उद्धव किस कारण से बचे रह गए? उन पर ब्राह्मण का साप क्यों नहीं लगा? सब तो चले गए, उद्धव क्यों बचे रहे? तो यहाँ पर श्रीपद जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की टीका लिखते हैं। निधनम का अर्थ भगवान का नित्य लीला, नित्य धाम कहा गया है। नी का अर्थ है नितराम, सर्वाधिक, और धनम का अर्थ है ऐश्वर्य, वैभव। नितराम ऐश्वर्य वैभव संपन्न जो भगवत धाम है उसको निधन कहते हैं। भगवान का धाम अनंत अप्राकृत धन ऐश्वर्य वैभव से संपन्न है, परिपूर्ण है। विष्णु भोज बंशी जादवगण भगवान के साक्षात परिकर हैं, पार्षद हैं, वे सभी अतिशय वैभवपूर्ण कृष्ण धाम में चले गए, निधन को प्राप्त हुए, भगवत धाम को चले गए। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि आकृति का अर्थ है भगवान की चेष्टा या लीला। आ माने सम्यक, सम्यक रूप से, पूर्ण रूपेण, और कृति माने लीला। या आकृति का अर्थ शरीर नहीं है। आकृतिम तत्यजे का अर्थ है कि भगवान अपनी लीला, जो अपनी लीला से मनुष्य शरीर प्राप्त किए थे, उस लीला का त्याग किए, यहां से चले गए, लोक दृष्टि से लीला ओझल हो गई। कि भगवान अपने दिव्य शरीर से अभिन्न है, भगवान में शरीर और शरीरी का भेद नहीं है, अतः शरीर बदलने या त्यागने का कोई प्रश्न ही नहीं है। श्री कृष्ण आकृति छोड़ दिए, इसका अर्थ है कि अपनी प्रकट मानवीय लीला का उपसंहार किए, जो यहाँ प्रकट लीला कर रहे थे उसका उपसंहार किए। इसलिए ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में उनके टीकाओं के अनुसार अध्ययन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन जीव गोस्वामी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे कृष्ण तत्ववेता आचार्यों के भाष्य से ही करना चाहिए। सबकी टीकाएं नहीं पढ़नी चाहिए। कुछ लोग अपने मन की कल्पना मनगढ़ंत बातें कह देते हैं, इससे बहुत अंतराय हो जाता है, बात समझ में नहीं आती है। उपगतेशु शब्द का वर्णन किए हैं, उप माने निकट या अच्छा से बढ़िया से, अगतेशु माने चले जाने पर। एकदम ठीक ढंग से जब भगवान के धाम में चले गए उपगतेशु, निधनम उपगतेशु, अपने नित्य धाम में जब ठीक से चले गए, विष्णु भोजे अधिरथ जुथप जुथे पेशु मुख्य, जितने बड़े बड़े अधिपति थे, सेनापति प्रदुम्न अनिरुद्ध आदि सब जब चले गए, सतु कथम अवशिष्ट उद्धव यद हरि रपि तत्त्यजत आकृतिम त्यधीश। तीनों लोकों के अधीश्वर, ब्रह्मा शिव के अधीश्वर, सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भी जब मानव लीला त्याग कर चले गए तो फिर उद्धव कैसे बचे रहे। कृष्ण के समस्त परिकर जब अच्छी तरह से सुख पूर्वक और प्रकट नित्य धाम द्वारिका चले गए, तब कृष्ण अपनी लीला का स्मरण किए। बाद में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आकृति का अर्थ अमर कोश के अनुसार संकेत भी किए हैं। एक शब्द का बहुत अर्थ होता है। संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में प्रत्येक सार्थक शब्द का कम से कम 14 अर्थ होता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आकृति का अर्थ संकेत करते हैं। भगवान कृष्ण अपने प्रयाण के बाद संकेत के द्वारा उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने का आदेश दिया, अतः उद्धव साथ में भगवत धाम वापस जाने की अपेक्षा सांकेतिक आदेश का पालन ज्यादा महत्वपूर्ण समझे, इसलिए उद्धव नहीं गए। यह उत्तर है महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्म शापाद देशे न काले नाम मोघवांछित संघृत स्वकुलम स्फीतम त्यक्षम देहम चिंतयत। ब्रह्म शापाप देशे न काले नामोघवांछित संघृत्य स्वकुलम स्फीतम त्यक्षम देहम चिंतयत। अमोघ वांछित भगवान ब्रह्म शापाप देशेन कालेन स्फीतम स्वकुलम संघृत्य देहम त्यक्षम अचिंतयत। अमोघ संकल्प भगवान ब्रह्म शाप के बहाने अपनी शक्ति रूप काल द्वारा परिवर्धित अपने कुल का सम्यक हरण करके इस विराट प्राकृत ब्रह्मांड को छोड़ते समय विचार किए। जब सबको अपने नित्य धाम भेज दिए, तब भगवान संकल्प किए, सोचने लगे कुछ विशेष बात, क्यों उद्धव को छोड़े, इसको और डिटेल बतला रहे हैं। एक श्लोक में तो बता दिए कि उद्धव भगवान के आदेश का पालन करने के लिए रुक गए, लेकिन और इसको विस्तृत रूप में बताते हैं। जादवों का उपसंहार भगवान की इच्छा से हुई, ब्रह्मशाप से नहीं। अमोघ वांछित और सापाप देशे न, ये दो शब्द इस श्लोक में है। यहाँ एक सिद्धांत स्पष्ट हो रहा है, अपदेश का अर्थ है बहाना और ब्रह्मशाप केवल बहाना था। काले न अपि अमोघ वांछित, काल भी भगवान की इच्छा को विफल नहीं कर सकता, क्योंकि काल के महाकाल भगवान है। इस जगत में किसी व्यक्ति का शरीर बदलना, ग्रहण करना, सुख दुख प्राप्त करना, ये काल का काम है, काल उपस्थित करता है। परंतु भगवत परिकरगण कालातीत हैं, वो काल के प्रभाव में नहीं है, अतः उनको शरीर ग्रहण करना और बदलना वो काल के अधीन नहीं होता है, भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। भगवान में शरीर शरीरी का भेद नहीं है, फिर भी इस प्राकृत ब्रह्मांड को छोड़ते समय भगवान विचार किए। देहम त्यक्षण का अर्थ है विराट ब्रह्मांड भगवान का शरीर है, और जो विराट रूप है भगवान का उस रूप में, ब्रह्मांड या पृथ्वी को छोड़ते समय भगवान विचार किए, क्या विचार किए, अस्मा लोकाद परते मई ज्ञान मदाश्रयम अरिहत उद्धव एवाधा संप्रत्यात्मवताम बरह। कितना करुणा है भगवान के हृदय में, कितना स्नेह दया है हम लोगों के प्रति। भगवान सोचने लगे कि मेरे चले जाने के बाद इस समय आत्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ उद्धव ही साक्षात मुझसे संबंधित ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य है, अन्य कोई नहीं। कह रहे हैं कि संप्रति आत्मताम बर उद्धव एव अद्धा मदाश्रयम ज्ञानम अर्हति नान्यः। केवल उद्धव इस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। यह ज्ञान उद्धव को देते हैं और ये हमारा प्रतिनिधि बनकर बद्रिकाश्रम में रहेगा और भारत वर्ष के विशिष्ट विरक्त महात्मा वहां बद्रिकाश्रम में आया करेंगे, उनको उपदेश देगा। इसलिए इस लोक से चले जाने के बाद अपने रूप गुण लीला माधुर्य वर्षण से विरत होने के बाद मुझसे संबंधित ज्ञान को केवल मैं जानता हूँ और कोई जानता नहीं, उस ज्ञान को उद्धव जानने योग्य है, यह अर्थ है। मेरे दर्शन कांक्षी और मेरे निकट ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक बद्रिकाश्रम वासी मुनियों को मेरा प्रतिमूर्ति रूप ज्ञान प्रदान करने में उद्धव ही योग्य है, काबिल है। आत्मवताम, आत्मा माने श्री कृष्ण जिसके स्वामी या प्रभु है, ऐसे आत्मविद गणों के बीच में उद्धव श्रेष्ठ है। इस श्लोक में मदाश्रयम ज्ञानम भगवान कह रहे हैं, मदाश्रयम भगवान सोच रहे हैं, मदाश्रयम ज्ञानम। दिव्य ज्ञान के तीन विभाग है, बदंती तत्त विदस तत्त्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अद्वय तत्व ज्ञान को तत्ववेता विद्वान लोग उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं उस ज्ञान को, तो उसका तीन विभाग बनाते हैं, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। तो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, सर्वव्याप्त परमात्मा का ज्ञान सबके हृदय में है और परिकरों के साथ नित्य लीला परायण भगवत ज्ञान, भगवान का ज्ञान। इन तीनों में भगवान का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, इसको भगवत तत्व विज्ञान कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के लीला काल में उद्धव जैसा भगवत तत्ववेता अन्य कोई नहीं था, इसलिए एक आचार्य के रूप में भगवान उन्हीं को बद्रिकाश्रम भेज रहे हैं। इस ज्ञान की का एनालिसिस जो किया गया है, विश्लेषण, उसको वैष्णव आचार्य लोग कई उदाहरण से समझाते हैं। जैसे दूर पर किसी अग्नि का बोध हो, जानकारी हो, दिखाई न दे, तो उसे निकलने वाले धुआं देखकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वहां आग है, लेकिन ये परफेक्ट ज्ञान नहीं है। धुआं जहां है वहां आग है, ये सत्य है, लेकिन धुआं ही आग का स्वरूप केवल नहीं है। फिर निकट जाते हैं कुछ तो पता चलता है कि धूम्र के साथ कुछ प्रकाश भी है, एक विशिष्ट बेटर ज्ञान, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं है। और जब बिल्कुल निकट जाते हैं तब पता चलता है कि इस आग में दाहिका शक्ति है, जलाती भी है। धुआं प्रकाश और दहन जलन, जलनशीलता जो है आग का एक्चुअल ज्ञान है, परफेक्ट ज्ञान, असली ज्ञान है कि यह आग जलाता है। तो उसी तरह भगवान का जो निर्विशेष निराकार ज्योति स्वरूप ज्ञान है, उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अव्यक्त रूप में सर्वत्र रहता है, जहां भी उनकी उस ज्योति स्वरूप की कल्पना की जाए, उस समस्त लोकों में सब जगह भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाली ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वह भी अप्राकृत चिन्मय है, सुखमय है, आनंदमय है, उसके साथ है सबके हृदय स्थित परमात्मा के रूप में भगवान की अवस्थिति है। कण कण में प्रत्येक जीवों के हृदय में, प्रत्येक जीवात्मा के साथ भगवान का एक अवस्थान है, निवास है, उसको परमात्मा कहते हैं। विद्या विनय संपने ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, भगवद गीता में भगवान कहते हैं। जो पांडित्य पूर्ण बुद्धि वाला है वो सबके हृदय में देखता है भगवान को। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ता में और चंडाल में, सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है परमात्मा रूप का। और इसके साथ भगवान एक व्यक्ति है, हमारे सुख दुख को सुनते हैं, आनंद आनंदित रहते हैं, वो अपने परिकरों के साथ कबड्डी खेलते हैं, कुश्ती करते हैं, नृत्य करते हैं, लीला विहार करते हैं, ये है भगवान की स्थिति। तो ये है भगवत ज्ञान। इस पर विचार करते हुए उद्धव सोच भगवान सोच रहे हैं, नो धो अर्वपि मन्युनो यद गुणई नादितः प्रभु अतो मद वैनम लोकम ग्राह्या निहतिष्ठतु। उद्धव मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है, मेरे बराबर सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो विषयों से जितेंद्रिय है, विषय भोग में लिप्त नहीं है। अतः लोकम मद वैनम ग्राह्यन इह तिष्ठतु, लोगों को मेरे विषय में ज्ञान देने के लिए इसी भूतल पर रहे। भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए विषयी होना बिल्कुल अनुचित है। गुणई न अर्दिता है, गुणों से जो प्रभावित न हो वह भगवत ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। जिसके हृदय में संसार के भोगने की लालसा है, यहाँ के मान प्रतिष्ठा सुख वैभव स्त्री धन ये सब जिसको चाहिए, वो भगवान के अय जितिज ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। भगवान के प्रतिनिधि बनने के लिए सबसे बड़ी योग्यता है प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहना, प्रकृति के गुण उसको प्रभावित न कर सके। जो व्यक्ति इस दिव्य योग्यता को प्राप्त कर लेता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। इहा जस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं, भगवान के ऐसे प्रेमी भक्त गोस्वामी कहलाते हैं। उद्धव जी ऐसे ही दिव्य पद को प्राप्त थे, ऐसे महान व्यक्ति थे। एवं त्रिलोक गुरुणा सान्दिष्ट शब्द जोनिना बदरिया आश्रम आसाद्य हरिमी जय समाधिना। त्रिलोक गुरु वेद वक्ता भगवान द्वारा इस प्रकार आदेश प्राप्त करके बद्रिकाश्रम में पहुंचकर एकाग्र चित्त से भगवान की आराधना करने लगे। इस प्रकार उद्धव भगवान के आदेश को स्वीकार करके बद्रिकाश्रम में चले गए। एवं त्रिलोक गुरुणा, इस पर श्रीपाद चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इस प्रकार भगवान त्रिलोक के गुरु हैं। त्रिलोक कहते हैं ऊपर के लोक, नीचे के लोक और बीच का। पूरे 14 भुवन को त्रिलोक कह दिया जाता है, ऊपर नीचे बीच नहीं, तो 14 भुवन है। पृथ्वी से ऊपर 6 लोक है और नीचे 7, लेकिन इसको ऊपर नीचे बीच कहकर त्रिलोक कह दिया जाता है। स्वर्गादिक तीनों लोकों के गुरु श्री कृष्ण हैं और उनका हर जगह उपदेश हुआ है। बद्रिकाश्रम केवल वंचित रह गया, वहां नहीं गए, तो अपने प्रतिनिधि उद्धव से उसको पूरा कराना चाहते हैं। भगवान श्रुतदेव बहुलाश को उपदेश करने के लिए गए पृथ्वी पर, उधर मिलने गए। बाणासुर आदि असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए घूमते रहे पृथ्वी में, जहां तहां असुरों का वध किए और कुछ ज्ञान दिए। और फिर पारिजात आदि का हरण करने स्वर्ग में गए, इंद्र की सहायता करने, इंद्र को उनके माता अदिति की कुंडल मणि कुबेर का छत्र देने के लिए गए। वहां भी अपने दिव्य ज्ञान का प्रकाश किए। ब्राह्मण के पुत्रों को लाने के लिए नीचे भी गए, नीचे के लोकों में देवकी के पुत्रों को लाने के लिए गए, यमराज के पास गए, नीचे के लोक में भी गए। इस बहाने समस्त भूतल, स्वर्ग, वैकुंठ, सूतल लोक, यम लोक, पाताल आदि स्थानों में जाकर अपना दर्शन और उपदेश किए और उन निवासियों को, उन स्थान के निवासियों को कृतार्थ किए। लेकिन भगवान बद्रिकाश्रम नहीं जा पाए, वहां के ऋषि लोग उत्कंठा में थे कि भगवान इधर भी आवे, लेकिन नहीं जा पाए, इसलिए अपने प्रतिनिधि उद्धव को भेज रहे हैं। संदिष्ट सम्यक रूप से आज्ञा दिए और उस आज्ञा को प्राप्त करके उद्धव बद्रिकाश्रम चले गए। अर्थात भगवान द्वारा नर नारायण के लिए एक लिखित पत्र दिए भगवान उद्धव के द्वारा, यह अर्थ है। उद्धव भगवान से अणु मात्र भी कम नहीं है। उद्धव गए मतलब भगवान आए, नो धोव अणवपी, वेद वक्ता भगवान द्वारा ऐसे अनुपलब्ध ज्ञान उद्धव के माध्यम से नर नारायण को दिया गया। यहाँ यह प्रतिध्वनित हो रहा है, चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, ऐसा लगता है। तो फिर विदुरो उद्धव आश्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः कीड़योपात देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विहोलात्मनां आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भगवते रुरोध प्रेम विह्वला। तीन श्लोक का अन्वय एक साथ है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, विदुर भी उद्धव के मुख से लीला हेतु प्रकटित श्री भगवान के प्रशस्त लीलाओं एवं धीर भक्तों का धैर्य वर्धक और अधीर चित पशु तुल्य बहिर्मुख जनों के लिए अचिंत भगवान का तिरोभाव तिरोधान सुनकर और अपने को कृष्ण द्वारा मन से स्मृत जानकर परम भागवत उद्धव के चले जाने पर उन बातों का चिंतन करके अतिशय प्रेम विह्वल होकर फफक फफक कर रोने लगे, कुछ देर तक बेहोश हो गए। मतलब हे महाराज परीक्षित, लीला हेतु भगवान ने मनुष्य शरीर धारण किए थे, लेकिन उनका यह शरीर प्राकृत नहीं था, अप्राकृत नरबपू था। जो भगवान अपने भक्तों को सुख प्रदान किए मनुष्य रूप में आकर के, भक्तों के प्रेम को बढ़ाने वाला वो रूप था, लेकिन जो पशु तुल्य कृष्ण विमुख लोग है, बहिर्मुख पाखंडियों के बुद्धि के बाहर की थी चीज था। उद्धव के मुख से इन लीलाओं को सुने, उन लीलाओं को सुनकर धीरे धीरे विदुर अधीर होते जा रहे थे, और साथ में यह भी सुन लिए कि चलते चलते भगवान हमारा स्मरण किए, अंतर्धान होने के पहले हमारा स्मरण किए, हमको उपदेश करने के लिए मैत्रेय मुनि को आदेश किए। यह सुन करके विदुर अत्यंत विह्वल हो गए, और विह्वल होकर बिल्कुल फफक फफक कर रोने लगे, और उद्धव के जाने के बाद बहुत देर तक वहां वृंदावन में पड़े रहे, रोते रहे, फूट फूट कर रोने लगे। मतलब विदुर जी को इस बात से ज्यादा अधीरता प्रेम विह्वलता उत्पन्न होने लगा कि भगवान कृष्ण अंतिम समय में इस धराधाम से जाते समय हमारा स्मरण किए। यद्यपि विदुर अपने को अति तुच्छ मानते थे, बहुत छोटा मानते थे, तथा अहेतुकी कृपा से भगवान उनका स्मरण किए। विदुर यह मान रहे कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है कि मेरा स्मरण भगवान करें, लेकिन भगवान की एक विशेष कृपा है, विशेष स्नेह है कि मेरा स्मरण किए। विदुर जी को यह स्मरण होने लगा और इस तरह से वो रोने लगे। विदुर जी इसको भगवान का परम अनुग्रह मानकर रोने लगे। इस प्रकार का रोदन विकसित भक्ति का उच्चतम रूप है। ऐसा नहीं है कि एक भावुकता में बस रो रहे हैं विदुर, वास्तव में उच्चतम स्तर है भक्ति में आंसू और रोना, भक्ति के उच्चतम दशा का द्योतक है। भगवान के प्रेम में विह्वल होकर जो रोता है, निश्चित रूप से वो महान भक्त है। रोने से दो बातें होती है, उसके हृदयगत दोष दूर होते हैं और भगवान का प्रेम विकसित होता है, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार कालिंद्या कतभीषी ध अहो भी भरतर सभा प्राप्त स्वसरितम जत्र मित्रा सुनो मुनि। तो हे भरत श्रेष्ठ, भरतर सभा, महाभागवत विदुर, कत भी अहो भी सीधे कालिंद्या स्वसरितम जत्र मित्रा सुतः वर्तते। कुछ दिन वृंदावन में निवास करके, कुछ दिन रहे विदुर जी वृंदावन में, इसके बाद जमुना से चलकर गंगा के पास चले गए, अने गंगा तट पर जहां मैत्रेय मुनि रहते थे उधर हरिद्वार में चले गए। कुछ दिन तक वृंदावन के चिन्मय दिव्य धाम का स्वादन किए,
कुछ दिन तक रहे। उद्धव जी तो तुरंत निकल गए, लेकिन विदुर जी कुछ दिन वृंदावन रहे। यहाँ कहते कत भी अहो भी सिद्ध है, कुछ दिन रहे। कुछ दिन का एकदम एक टाइम नहीं बतला रहे हैं कि 10 दिन 20 दिन महीना दिन, लेकिन कुछ दिन रुके। इसके बाद कालिंद्या स्व सरिता जत्र मित्रा सुतः वर्तते, कालिंदी के तट से, जमुना के तट से गंगा के पास हरिद्वार चले गए, जहाँ आनंद घाट पर मैत्रेय मुनि रहते थे। तो मैत्रेय मुनि के पास जाकर फिर जिज्ञासा किए। ये कथाएं आगे के अध्यायों में वर्णन है। फिर पांचवें अध्याय से लेकर तीसरे स्कंध के पांचवें अध्याय से पूरा तीसरा स्कंध और चौथा स्कंध मैत्रेय और विदुर संवाद के रूप में पूरा हुआ है। ये सब कथाएं आगे है। तो श्री भगवान की कृपा से भगवान के इन लीलाओं पर विचार विगत 7 दिनों से चल रहा है। भगवान की महती कृपा से ये प्रसंग पूरा हुआ, जिसमें दो महापुरुष महाभागवत उद्धव और विदुर के बीच के संवाद का वर्णन किया गया, जिसमें कृष्ण विरह संतप्त महापुरुष कृष्ण के गुणों की चर्चा कर रहे हैं, उनकी भक्ति की ऊंचाई, उनके कृष्ण के प्रति आत्मीयता आसक्ति का वर्णन हम लोग सुने। एक भक्त के रूप में क्या कर्तव्य होना चाहिए, किस रूप में भगवान के गुणों का स्मरण करना चाहिए, सारी बातें हम लोग सुने। और ये सब सुनने का अवसर हमें मिला, इसमें निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में भगवान और उनके भक्तों की विशेष कृपा है, उनकी अहेतुकी कृपा है, जिसके फलस्वरूप हम लोगों को ये अवसर मिला, आप लोगों को सुनने का अवसर मिला, हमको इसको पढ़ने मनन करने और बोलने का अवसर मिला, इसलिए हम विशेष रूप से कृतार्थ अनुभव करते हैं। इसके साथ श्री भगवान आपको निमित्त बनाए, मुख्य रूप से केडी सर को विशेष धन्यवाद है जिन्होंने इसका आयोजन किया और बहुत आग्रह पूर्वक मुझे बुलाने का प्रयास किए। श्रीधाम मायापुर में इनको पता चला मेरे विषय में, तो मेरे पास फोन किए, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं रहा था कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा आयोजन है। तो फिर मैं जन्माष्टमी के समय झांसी में कथा करता था, वहां पहुंचे और विशेष आग्रह किए। और इसके साथ हमारे परम बंधु भूषण कृष्ण प्रभु विशेष रूप से आग्रह किए, जो मुंबई में जुहू मंदिर में रहते हैं, और मायापुर में श्याम सुंदर दास, वे लोग विशेष आग्रह करते रहे कि आप जाइए जाइए, गांव है, वहां के लोग कृष्ण भावना से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं, उनको अवश्य बतलाना चाहिए, आप जाइए। तो हम इन बंधुओं के विशेष प्रेरणा से यहाँ आए और सब कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रयास रहा इनका, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रति साल यहाँ भागवत का आयोजन करते हैं, यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। और इसके साथ यह पता चला कि गायों की सेवा के प्रति अत्यधिक रुचि रखते हैं, गौशाला रखे हैं। आज की दुर्दशा है कि शहरों में शुद्ध भारतीय देसी गाय का दूध मिलना अत्यंत कठिन है, उसके जगह पर विष मिलता है बनाया हुआ, पता नहीं क्या क्या डालकर। हम लोगों का तो हिम्मत नहीं करता दूध लेने का, लेकिन यहाँ बड़ा निश्चिंत रूप से दूध प्राप्त करने में खुशी हुई, क्योंकि यहाँ अपने आंखों से देखे भारतीय गाय सेवा कर रहे हैं, लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं वैदिक संस्कृति से। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान के चरणों में विशेष प्रार्थना, किसी प्रकार की इनकी मति रहे और इनके प्रेरणा से हजारों लोग इन कामों में जुटे, यह हम भगवान से विशेष प्रार्थना करते हैं। और जिन लोगों ने इनका सहयोग दिया उन सबको हम धन्यवाद देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपनी महती कृपा से सबको अपने चरणों में लगाएं, सबकी मति वैदिक संस्कृति से युक्त हो, सबको सुख शांति का अनुभव हो, सभी निरोग रहें, सबका चित भगवान में लगे, यह हमारी शुभकामना है। वास्तव में विशेष रूप से हम आभारी हैं भूषण कृष्ण प्रभु और इनके भाइयों का, जिन्होंने हम लोगों के लिए बहुत सुस्वादु और कृष्ण अर्पित प्रसाद की व्यवस्था किए, बड़ा सुंदर आत्मीय व्यवहार किए। हम तो इनके प्रति ऋणी अनुभव करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको हर तरह से सुख शांति प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो और इनका चित्त भगवान में लगे, भगवान की विशेष कृपा इनको प्राप्त हो। हरे कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री।